आज का प्रातः क्लास है, 10 जुलाई 1968। बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं तो दिल में ये आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे हैं। सारी दुनिया तो वैश्यालय है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो दिल में आता है कि हम शिवालय में बैठे। जरूर शिव बाबा भी याद आ जाता है और स्वर्ग भी याद आ जाता है। अभी ये दुनिया तो है वैश्यालय, अभी उस वैश्यालय से घृणा आती है, तो शिवालय को तो बहुत अच्छी रीति याद करना है। अच्छी रीति याद करना है माना बुद्धि सदैव कहाँ धरी रहे, मधुबन में ही बुद्धि धरी रहे। क्योंकि याद से ही सुख होता है, तो ये भी बुद्धि में याद रहे हम शिवालय में बैठे तो खुशी भी होगी। क्योंकि जाना तो आखिरी शिवालय में ही है, हाँ शांति धाम में कोई बैठ तो नहीं जाना है, क्योंकि वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, सुखधाम को भी शिवालय कहेंगे, और शिव बाबा ही तुमको शांति धाम में ले जाते रहते भी बनाएंगे, तो दोनों को शिवालय कहेंगे। और दोनों की स्थापना शिव बाबा करते हैं, शांति धाम की स्थापना करते हैं क्या? ये शांति धाम तो सदैव है ही है, जहाँ आत्माएं रहती हैं, वो आत्माओं का घर तो कभी खाली नहीं होता है, परंतु हाँ इस सृष्टि में भी शिवालय है जिसे शांति धाम कहा जावे। वो बाप आकर के स्थापन करते हैं, क्योंकि ये सारी दुनिया वैश्यालय है, जहाँ अशांति ही अशांति लगी पड़ी है। उस साकार दुनिया में साकार परमधाम की स्थापना करते हैं, जिस संगठन में हर ब्राह्मण आत्मा आत्मिक स्टेट में रहती है, तो शांति धाम की भी स्थापना करते हैं प्रैक्टिकल में, और शिवालय की भी स्थापना करते हैं प्रैक्टिकल में। तो तुम बच्चों को दोनों की याद करना है, वो शिवालय शांति के लिए और वो सिवाले सुख के लिए। ये तो है दुखधाम। दुखधाम की स्थापना बाप नहीं करते हैं। एक बाप है सुखधाम और शांति धाम की स्थापना करने वाला, और रावण है दुखधाम की स्थापना करने वाला। अभी तुम तो संगम युग पर बैठे हो, तो शांति धाम और सुखधाम के सिवाय और कोई की भी याद नहीं होनी चाहिए। बल कहां जी बैठे हो, धंधे आदि में बैठे हो तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय होना चाहिए। तो दुखधाम को तो भूल ही जाना है। अगर दुखधाम को नहीं भूलेंगे तो क्या होगा? अंत मते सोगति हो जाएगी, क्योंकि अभी नई शक्ति की स्थापना हो रही है। ब्रह्मा ने सत संकल्पों से नई शक्ति रची, तो सतयुग का पहला पत्ता बनता है। हम बच्चे भी नंबरवार हैं। अभी जैसे जैसे संकल्पों का बीज बोएंगे वैसी वैसी हमारी सृष्टि बन जाएगी। इसलिए कहते हैं कि अभी महामृत्यु का समय आने वाला है। ये सबका अंतिम जन्म है, सबकी अंतिम घड़ी आने वाली है। तो अभी से ऐसी प्रैक्टिस करना है कि अंत समय में शांति धाम सुखधाम ही याद आवे और दुखधाम बिल्कुल भूल जावे। बच्चे जानते हैं ये वैश्यालय अभी खत्म हो जाने हैं। अब जब खत्म हो ही जाना है तो याद करें या न करें वो तो खत्म हो ही जाएगा, फिर अंतर क्या पड़ता है? खत्म तो हो जाएगा, लेकिन अंत समय में अगर थोड़ी भी याद आई तो ज्यादा पुनर्जन्म कहां लेने पड़ेंगे। इसी वैश्यालय की दुनिया में लेने पड़ेंगे। यहां बैठे बच्चों को झुटका आज भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि बहुतों की बुद्धि कहां कहां और तरफ चली जाती है, कितने माया के विघ्न पड़ते हैं। तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे मन मना भव। तुम बच्चों को ही क्यों कहते हैं? औरों को क्यों नहीं कहते घड़ी घड़ी? क्योंकि तुम बच्चे सन्मुख बैठ के पढ़ाई पढ़ते हो। सन्मुख होने की बात ही कुछ और है। भिन्न भिन्न युक्तियां भी बतलाते हैं।
अब यहाँ बैठे हो बाप के सामने, तो भी बुद्धि में याद करो हम पहले शांतिधाम से शिवालय में जावेंगे, सुखधाम शिवालय में आ रहे हैं। ऐसा याद करने से भी पाप कटते जावेंगे। क्या बात हुई? एक को याद करने से पाप कटते जावेंगे या सुखधाम को भी याद करें, शांति धाम को भी याद करें, शिव बाबा को भी याद करें? किन-किन को याद करने से पाप कटेंगे क्या है? बाप जहाँ बैठा है, जहाँ प्रवेश है, वो भी बाप का धाम है, वो शांति धाम भी है, सुख का धाम भी है। बच्चे अनुभव भी करते हैं कि बाप के सन्मुख जब जाते हैं तो अवस्था क्या हो जाती है। बोला जितना याद करते जाएंगे उतना तुम कदम को आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ तो खास कोई और ख्याल आप में नहीं बैठना चाहिए। क्यों? यहाँ और ख्यालात में बैठेंगे तो क्या होगा? वाइब्रेशन खराब करेंगे, औरों को नुकसान पहुंचाते हो, फायदे के बदले अपना भी नुकसान करते हो और औरों का भी नुकसान करते हो। आगे निष्ठा में जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बैठाया जाता था, कौन झुटका खाते हैं, कौन आंख बंद करके बैठते हैं, तो तुम बड़े खबरदार रहते थे। सामने संदली पर किसी को किस लिए बैठाया जाता था है? कोई और को संदली पर इसलिए नहीं बैठाया जाता था कि वो बैठ करके दृष्टि देवे, इसलिए बैठाया जाता था। अभी तो बताया, चेकिंग करने के लिए बैठाया जाता था, जांच करने के लिए, कौन झुटका खाते हैं, कौन आंख बंद करके बैठते हैं, तो तुम बच्चे बड़े खबरदार रहते। बाप भी अभी देखते हैं इनका बुद्धियोग कहाँ कहाँ भटकता है। बुद्धियोग भटकता है क्या या झुटका खाते हैं? ऐसे भी बहुत आते हैं, बाप के सामने बैठे रहते हैं परंतु झुटका खाते रहते हैं, कुछ भी समझते नहीं। ब्राह्मणियां ऐसों को भी ले आती हैं, शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े सयाने लेकर के आना चाहिए, जो गफलत में न रहे, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है, ये तो सुप्रीम बाप सिखलाते हैं। तो यहाँ बहुत सावधान होकर के बैठना चाहिए। मानो बाबा 15 मिनट शांति में बैठाते हैं, तुम तो घंटा दो घंटा भी बैठते हो। तो जो कच्चे हैं उन्हों को सावधान करना चाहिए। ब्राह्मणियां जो भी सेंटर पर रहती हैं वो तो पूरा जानती ही नहीं है। सावधान नहीं करती है, नहीं तो सावधान करने से सुधार हो जाएंगे, कुछ समय तो याद में रहेंगे, नहीं तो जैसे कि संगठन में बैठ करके बिघन डालते हैं। बाबा जान जाते हैं ये निकु बुद्धि कहाँ न कहाँ दुनिया में भटकती रहती है, ये भी जानते हैं कि सभी तो महारथी नहीं है, महारथी भी है, घोड़े सवार भी है, प्यादे भी, और साथ की अपनी अपनी नंबरवार दौड़ है। बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए थे, ये म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में तुम बच्चे जो शिवालय वैश्यालय और पुरुषोत्तम संगम युग की सीन दिखाते हो, ये तीन सीन समझाने के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये तीनों सीन बड़े बड़े बनाने चाहिए। कौन कौन से? शिवालय, वैश्यालय और पुरुषोत्तम संगम युग। सबसे बड़ा हाल इनके लिए होना चाहिए, जो मनुष्यों की बुद्धि में झट बैठे। कई बच्चे तो जो भी बनाते रहते हैं बस उसी में खुश होते रहते हैं, परंतु विचार चलाना चाहिए कि हमने जो बनाया है इसमें इम्प्रूवमेंट श्रीमत के अनुसार कैसे लावे। तो वैश्यालय, शिवालय और बीच में पुरुषोत्तम संगम, ये तीनों सीन तो बहुत अच्छा बनाना चाहिए। इनसे मनुष्यों को अच्छी रीति समझानी मिल सकती है, समझेंगे। हम तो कलयुगी रावण राज्य वैश्यालय में बैठे हैं और ठीक ठीक करके समझाना चाहिए। सिवाय अच्छे पुरुषार्थ के कोई भी सदगति को नहीं पावेगी। पुरुषोत्तम संगम युग की तपस्या में भी तुम 5-6 को दिखाते हो बैठा हुआ, परंतु नहीं, 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। बड़ा बड़ा बनाना चाहिए और उनमें भी 3 सीनरियों में भी वैश्यालय तो बहुत बड़ा दिखाना चाहिए। उसमें सभी दिखाना चाहिए। इस वैश्यालय में ये धंधा होता है, ये भीख मांगते हैं। ये सन्यासी देखो क्या करते हैं, बड़ा बड़ा बना करके इसके लिए अक्षर में लिख देना चाहिए। बात बात के रंगीन कपड़े वाले सन्यासी होते हैं, सफेद कपड़े वाले सन्यासियों को भी दिखाओ कैसे भीख मांगते हैं। फिर नीचे लिखना चाहिए कलयुगी पतित वैश्यालय। प्रेजेंट में ये वैश्यालय है तो मनुष्य समझेंगे कि हम तो अभी वैश्यालय में बैठे हैं, परंतु तुम इतना समझाते हो तो भी समझते थोड़ी है। जैसे कि निचाट बंदर बुद्धि बैठे हैं, तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, परंतु वो तो पत्थर बुद्धि है। तो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए, बड़े बड़े सीन दिखाना चाहिए और लिखना चाहिए कि ये है वर्तमान कलयुगी भ्रष्टाचारी वैश्यालय। 10 जुलाई 1968 की वाणी तब उस तो मनुष्य समझे ये तो वाकई अभी की बात है। जो सर्विस में रहते हैं उन्हों को सर्विस बढ़ाने का ख्याल करना चाहिए। प्रोजेक्टर में प्रदर्शनी में इतना मजा नहीं होता है जितना कि म्यूजियम में है। एडवांस में तो न प्रोजेक्टर होता है न प्रदर्शनी होती है न म्यूजियम होता है, है? बेसिक में होता है जड़ म्यूजियम, जड़ प्रदर्शनी, जड़ प्रोजेक्टर, और एडवांस में होता है चैतन्य म्यूजियम। सबसे अच्छी चीज है तो चैतन्य म्यूजियम पहले बनता है या बाद में बनता है, है? जब पुरुषार्थ पूरा होता है तो अंत में नंबर वार म्यूजियम तैयार होते हैं। तो बताया प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझेंगे नहीं, ये तो फालतू है। सबसे अच्छा है म्यूजियम, बन छोटा सा हो। छोटे छोटे 6 कमरे हों उसमें भी म्यूजियम हो, 1 कमरे में शिवालय वैश्यालय पुरुषोत्तम संगम युक्ता सिंह हो, समझावे किस समय सभी हैं भ्रष्टाचारी, 1 भी शिष्टाचारी नहीं है। परंतु मनुष्य कोई समझते थोड़े ही है कि हम भी भ्रष्टाचारी हैं। इस दुनिया में शिष्टाचारी तो कोई हो नहीं सकता। ऐसा कोई मनुष्य मात्र नहीं है जो तन की कर्मेंद्रियों से, मनसा के संकल्पों से, वाचा की वाणी से सदैव श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ करने वाला हो, सब भ्रष्टाचारी है। इतना जोर से समझाना है और समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बेहद का बाप, बेहद का टीचर आया है तो हम बैठ थोड़े जावेंगे। हम तो यही धंधा करेंगे जो बाप ने हमें सिखाया है। कोई बीए में पास करने के लिए नहीं बैठ जावेंगे। हम जानते हैं कि बाप कोई बैठा थोड़े ही रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा। बाकी थोड़ा समय है वो भी जागते नहीं है। अच्छी अच्छी जो बच्चियां होंगी वो कहेंगी कि न 400-500 रुपयों के लिए हम क्यों टाइम बर्बाद करें। हम टाइम बर्बाद करती रहेंगी तो शिवालय में हम क्या पद पावेंगी। बाबा देखते भी हैं कि कुमारियां तो सबसे जास्ती फ्री हैं, भले कितना भी बड़ा पगार वाला हो तो भी इस ईश्वरीय सेवा के मुकाबले मुट्ठी में भूंगने वाला है। भूंगरा माने चना, जैसे बंदर के सामने रतन फेंक दो और चने भी डाल दो तो काय की मुट्ठी बांधेगा, भूंगरों की मुट्ठी बांधेगा, रतन फेंक देगा। बाप बतलाते हैं अभी ये रतन भी मिल रहे हैं, फिर ये भी खलास हो जाएंगे। नई दुनिया में ये रतन नहीं मिलेंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। बाप भूंगरे मुट्ठी छुड़ाने आए हैं, परंतु छोड़ते ही नहीं है। इसमें है चने की मुट्ठी और बाप मुट्ठी में देते हैं विश्व की बाप सही। वो तो पाई पैसे के चने हैं क्या, जो महीने में पेमेंट मिलता है, पगार मिलती है, उनको छोड़ करके रूहानी नॉलेज पढ़े तो मगज भी कुछ खुले। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बड़ों बड़ों को बैठ नॉलेज दे, बाप आए हैं शिवालय स्थापन करने के लिए। ये बात तो मान लेते हैं कि अभी दुनिया को खलास करने का बारूद बन गया है, ये सभी मिट्टी में मिल जाएगा। आगे ऐसा समय आएगा ये चने भी नसीब नहीं होंगे, तो बाप पहले से ही बता देते हैं तो सात धंधों में है नुकसान। अभी किसी की मुट्ठी में 5 चने हैं तो समझो 5 लाख हो, वो भी सब खत्म हो जाएंगे। उनको छोड़ने के लिए मनुष्य कितना तड़पते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अभी टाइम बहुत थोड़ा है, ऐसे मत समझो कि अभी तो 8 वर्ष पड़े हैं। दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती हैं। अचानक आफतें आ जाती हैं, मौत भी अचानक हो जाता है। कोई की मुट्ठी में भरपूर चने ही चने होते हैं तो भी अचानक प्राण निकल जाते हैं। तो मनुष्यों को इस बंदरपने से छुड़ाना है सिर्फ मीडियम देख करके खुश नहीं हो जाना। कमाल करके दिखाना है। इन्हें ह्यूमन मंकीज को सुधारना है। बाप तो तुम बच्चों को विश्व की बात चाहिए दे रहे हो, बाकी हैं तो 8 वर्ष। मैं तो समझता हूं 5 वर्ष भी मुश्किल होंगे। चने भी किसके नसीब में नहीं होंगे, सभी खत्म हो जाएंगे। इससे तो क्यों नहीं बाप से विश्व की बादशाही ले लो, कोई तकलीफ की बात तो नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना है, सुदर्शन चक्र फिराना है। घुंघरों की मुट्ठी खाली करके हीरे जवाहरातों से मुट्ठी भर करके जा रहे। ये मुसलमानों का गुरु आगा खान जिसको हीरो में तौला गया, वो तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। क्यों है हाँ, वो हीरे तो जड़ हीरे थे, और तुम तो ऐसे विश्व के बादशाह बनते हो जिसके लिए शास्त्रों में दिखाया है तराजू में एक तरफ कृष्ण को रखा और दूसरी तरफ हीरे जवाहरात रख दिए, परंतु वो तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। उन्होंने भी जड़ हीरे जवाहरात समझ लिए। है तो तुम चैतन्य हीरों की बात। अलग काल के लिए खुश हो जाते हैं। ये बड़े बड़े गुरु लोग भी बड़े गंदे होते हैं, शराब पीना, रेस में जाना। तो बाप समझाते हैं इन घूमरों की मुट्ठी के पिछाड़ी प्राण मत गंवाओ। मनुष्य शमशान में ले जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं। तुम्हारे हाथ तो भद्दू होकर के जावेंगे। कहते भी है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जावेंगे। परंतु वो तो दुनिया की बातें हैं, तुम्हारे तो बुद्धि रूपी हाथ है। इन बुद्धि रूपी हाथों में तुम अभी हीरे जवाहरात भरते हो, कितना भाग्य बनाते हो। तुम बुद्धि से समझ सकते हो, हमको तो बहुत बड़ी कमाई करनी है। ये 2-500 रुपया तो कुछ भी नहीं है, जो अच्छी रीति ये समझते हैं उनको दिल में आता होगा कि हम अपने जीवन भूमण और पिछाड़ी क्यों बर्बाद करें। हाँ, कोई बुजुर्ग है, बाल बच्चे बहुत हैं, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, तो उनको तो संभालना ही होता है। कुमारियों के लिए तो बहुत ही सहज है, उन पर तो कोई बोझ नहीं होता है। तो कोई भी सामने आवे उनको ये बातें समझाओ, बाप हमको ये बात सही देते तो हम विश्व की बादशाही ले लें, या तुम्हारे लिए 2-500 रुपए की भूंगरों की नौकरी करें। अभी तुम बच्चे समझते हो, हमारी मुट्ठी हीरों से भरती है, बाकी और तो सभी विनाश हो जाएंगे, खाली हाथ जावेंगे। बाप तुम बच्चों को समझाते रहते, तुमने 63 जन्म कितने पाप किए, कितना विकार में गए हो। मुख्य पाप है काम विकार का, दूसरा पाप है बाप और देवताओं को गाली देना, कितना डिफेम किया है। भिखारी भी बने हैं तो गालियां भी दी है, बाप की कितनी ग्लानी की है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी टाइम नहीं गंवाना चाहिए, ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि बाबा हमें याद नहीं कर सकते। बोलो, बाबा हम अपन को याद नहीं कर सकते, अपन को भूल जाते हैं, हम घड़ी घड़ी देहबान में आ जाते हैं। देहबान में आना माना अपन को भूल, अपन को ही आत्मा याद नहीं कर सकते, तो फिर वो बाप को कैसे याद करेंगे। ये बहुत बड़ी मंजिल है, और फिर सहजी भी बहुत है। कठिन क्यों है और सहज क्यों है, देहबान में रहते हैं तो कठिन है, आत्माभिमानी बन करके रहते हैं तो बहुत सहज है। बाकी माया अपोजिशन करती है, गीता आदि पढ़ते हैं अर्थ समझते नहीं है। भारतवासियों की तो है ही मुख्य गीता, हरेक धर्म का अपना अपना शास्त्र है। 10 जुलाई 1968 की वाणी का 30 रुपये, जो भी धर्म स्थापन करने वाले हैं उनको गुरु भी नहीं कह सकते हैं। ये भी बड़ी भारी भूल है, जो मनुष्यों को गुरु बना करके बैठे हैं, सदगुरु तो एक ही है, वो एक ही सदगति करते हैं, बाकी गुरु कहलाने वाले तो ढेर हैं। अपन को गुरु कहलाते हैं परंतु गति सदगति ना अपनी कर सकते हैं और न दूसरों की कर सकते हैं। कोई ने बारे का काम सिखलाया, इंजीनियरिंग का काम सिखलाया, समझते ये भी हमारे गुरु हो गए। हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है, परंतु वो कोई सदगति थोड़े ही करते हैं। सदगति करने वाला सदगुरु तो एक ही है, और तुमको तो अभी वो सदगुरु मिल गया है। वो सच्चा बाप भी है, सत्य टीचर भी है, इसलिए अभी बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए। यहां आते हैं तो यहां से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर के जाते हैं, फिर घर में जाने से ही यहां का सब भूल जाते हैं। जैसे कोई गर्भ जेल में जाते हैं, वहां भी बहुत सजा मिलती है, इस दुनिया में होती है गर्भ जेल, नई दुनिया में तो गर्भ महल होता है, क्योंकि वहां नई दुनिया में कोई भी कर्म नहीं होता, सब आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तो आत्माभिमानी होने के कारण विकर्मों का तो सवाल ही नहीं, जो सजा खानी पड़े। यहां तुम बच्चे समझते हो हम बाप से सन्मुख पड़ रहे हैं, वहां घर में जावेंगे तब तो ऐसे नहीं समझेंगे, वहां समझेंगे भाई भाई को पढ़ाते हैं। यहां तो तुम डायरेक्ट बाप के पास आते हो, बाकी बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं कि बाप की समझाने में और बच्चों की समझाने में रात दिन का फर्क हो जाता है। बाप बैठ बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे बच्चे कहकर के समझाते रहते हैं, तुम शिवालय और वैश्यालय को भी समझाते हो, है तो बेहद की बात। तो ये शिवालय वैश्यालय क्लियर करके दिखाओ तो मनुष्य अच्छी रीति समझे। अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर भी रहम करना चाहिए। बोलो क्या इस वैश्यालय में ही रहना है? बाबा की ख्यालात तो चलती है कि कैसे कैसे समझा रहे। यहां तो इस दुनिया में बड़े बड़े बंदर बुद्धि, कितना भी समझाओ समझते ही नहीं है। कितनी ही तुम मेहनत करते हो फिर भी जैसे डब्बे में ठिकरी है, हाँ हाँ करते जाते, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। ये बातें तो गांव गांव में समझाना चाहिए परंतु खुद नहीं समझते। जो साहूकार लोग हैं पैसे वाले, वो लोग तो नहीं समझे, वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि उनको तो पिछाड़ी में आना है। तो कब समझेंगे? जब रिहर्सल की पिछाड़ी होगी तब समझेंगे, तो तू लेट हो जाएंगे, ना उनका धन काम में आवेगा और न याद में रह सकेंगे। बाकी हाँ, जो अभी सुनेंगे भले चलेंगे नहीं, मेरे मुख से दो अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे, प्रजा बन जाएंगे। गरीब बहुत ही ऊंचा पद पा सकते हैं, और तुम कन्याओं के पास क्या है, कन्याओं को गरीब कहा जाता है क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चे को मिलता है, बच्चियों को तो वर्षा भी नहीं मिलता, बच्चियों को दान दिया जाता है, गुप्त दान मुट्ठी में देंगे और वो दान भी तब देते हैं जबकि वैश्यालय में जाती है। अभी देखो शिवालय में ले जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, माँ बाप भी कहते हैं कि वैश्यालय में जाओ तो तुम्हें दम देंगे, तुम शिवालय में जाती हो तो हम तुम्हें एक पाई भी नहीं देंगे। अब देखो इनकी मनोवृत्ति कैसी है, तो कहेंगे ना इनकी तो बंदरों की मनोवृत्ति है। अभी तुम बच्चियों को कोई से भी नहीं डरना चाहिए, खुली रीति समझाना चाहिए, समझाने में बड़ा फुर्त होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल सच बात बतलाती हो, ये संगम युग है, उस तरफ दुनिया में है भूंगड़े की मुठ्ठ और इस तरफ है हीरों की मुठ्ठ। अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनती हो तो पुरुषार्थ करके हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए और शिकल भी बहादुर शेरनी मिसल हो। कोई कोई की तो शिकल ही जैसे रीढ़ बकरी मिसल है, मैं ही करती रहती है, फिर कहीं थोड़ा ही विरोध का आवाज हुआ और डर जावेंगे, तो बाबा सभी को खबरदार करते हैं, कन्याओं को तो कहीं भी फंसना नहीं चाहिए और ये बंधन में फंसेंगी तो फिर विकारों के लिए डंडे खाती रहेंगी। ज्ञान अच्छी रीति धारण करेंगे तो विश्व की महारानी बनेंगी। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूं, परंतु कोई तो पत्थर बुद्धि ऐसे हैं कि समझते ही नहीं है, कहेंगे इनकी नसीब में ही नहीं है, बाप तो है ही गरीब निवास और ये कन्याएं तो है ही गरीब, माँ बाप शादी नहीं करा सकते हैं तो दे देते हैं, तो उनको नशा चढ़ जाना चाहिए कि हम तो गरीबों की कन्या होते हुए भी अभी पढ़ करके अच्छा पद पावे। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, वो पास विदानर हो जाएंगे, उनको फिर स्कॉलरशिप भी मिलती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पावेंगे, और उच्च पद भी 21 जन्म के लिए पावेंगे। यहां कोई अल्पकाल की बात नहीं है, तो दुनिया में है अल्पकाल का सुख। आज कुछ मर्तबा मिल जाएगा, कल मौत आ जाएगा, खलास हो गया। तमो प्रधान दुनिया है ना, वहां दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाती है। अभी यहां इस पुरानी दुनिया में एवरेज आयु 35 वर्ष है, और वहां तो 125-150 वर्ष आयु होगी। तो देखो योगियों में और भोगियों में कितना फर्क हो जाता है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। तो बाप कहते हैं गरीबों पर जास्ती ध्यान दो, साहूकार कोई मुश्किल से उठावेंगे, सिर्फ कहते रहेंगे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, ये संस्था बहुत अच्छा काम करती है, बहुतों का कल्याण करेगी, फिर अपना कुछ नहीं कल्याण करते। बहुत अच्छा कहा, बाहर गए और खलास, माया डंडा उठाए उनके पीछे फिरती रहती है, होश हवासी गुम कर देती है, एक ही थप्पड़ लगाने से अकल चट कर देती है। बात समझाते हैं, अभी भारत का हाल देखो क्या हो गया है। अभी बच्चों ने तो ड्रामा को अच्छी रीति समझाया है। देखो ये डॉक्टर खेमचंद है, आंखों की ऑपरेशन करने जाते हैं, साथ में ज्ञान का तीसरा नेत्र भी देते हैं। बाप भी खुश होते हैं कि ये तो बहुतों का कल्याण करते हैं। 10 जुलाई 68 वाणी का चौथा पेज, हीरे जवाहरातों से अच्छी रीति मुट्ठी भरनी है। अभी तुम यहां के नहीं हो, समझो कि हम तो रावण राज्य में बैठे हैं, फिर अभी हम पुरुषार्थ करके जा रहे हैं। टांग इस पुरानी दुनिया की तरफ है और मुंह नई दुनिया की तरफ होना चाहिए। बच्चों को जब भी समय मिलता है तो विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे कैसे करके युक्ति बतावे। क्या बात है जो इतना माथा मारते हुए भी ये समझते नहीं है, इतने पत्थर बुद्धि है क्या। भगवान के सिवाय तो कब कोई सुधार मिल सकता, तो बाप को ही आना पड़ता है ऐसे पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने के लिए। ये कृष्ण कब आवेगा, कैसे आवेगा, तो ये भी किसी को पता नहीं। तो 40,000 वर्ष कह देते हैं, ये पुरानी दुनिया अभी कलयुग 40,000 वर्ष चलेगा। अब इतनी पुरानी बात तो किसी को याद भी नहीं आएगी, तो नई बातें सुनाते हो। तो ये मेहनत करने के लिए भगवान को आना पड़ता है, आकर के बंदरों को मंदिर लायक बनाते, पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें गफलत करेंगे तो वहां नहीं पहुंच सकेंगे। बाप जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस करते हैं। कुमारियों की पढ़ाई में बुद्धि अच्छी रीति होनी चाहिए। आजकल तो कुमारियां भी नौकरी करने लग जाती हैं, वहां उनको क्या मिलता है, मुठ भर घूंगड़े मिल जाते हैं और क्या। तो विश्व की बात सही बाप देते हैं, तो वजन करो। अभी संगम युग है, ये पुरानी दुनिया खलास होनी है, तो हीरो से मुट्ठी भरनी चाहिए या घुंघरों से। हीरे मुठ का पूरा जानते नहीं है, घुंघरे मुठ पर ही राजी हो जाते हैं। समझाना चाहिए कि हम तो ईश्वरीय सर्विस करती है, मनुष्य को देवता, वैश्यालय को शिवालय बनाने की मेहनत करती है। वास्तव में कन्याओं को थोड़े ही नौकरी करनी चाहिए। माँ बाप व भाइयों आदि की पालना कन्याओं को नहीं करना है, ये तो पुरुषों का काम है। सास ससुर भी बहू की कमाई नहीं खाते हैं, तो कन्या की कमाई कैसे खावेंगे, ये तो ला नहीं है। परंतु आजकल भूखड़े बहुत हो गए हैं, बच्चियां भी कमा करके सारे घर को खिलाती हैं। इतनी दुखी है कि अपन को छोड़ाए भी नहीं सकती है। अभी तो तुम बच्चों को शेर नहीं बनना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। विघ्न तो पड़ेंगे, अत्याचार होंगे, माता ही पुकारती है और बाप कलश भी माताओं को देते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है, तुम कब फीमेल से मेल, कब मेल से फीमेल बनते हो। बल समय मेजॉरिटी माताओं की है, वहां तो कोई पुरुष भी बन जाएंगे ना, ऐसे नहीं, फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है। नहीं तो बाप कहते हैं खास कुमारियों को अपने पर रहम करना, अपने पर रहम नहीं करेंगी तो अपने ही ऊपर पहाड़ गिराती है विकार में जाकर के। बाप तो आकर के निर्विकारी बनाती है, उस काले जाद में जो मर्तबा दिया जाता है उस मर्तबे को भी देखो और ये मर्तबा भी देखो। पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। माताओं कुमारियों को तो बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुतों की सर्विस करनी है। मददगार बनने के लिए बाबा बैठे, बड़े बड़े म्यूजियम खोलो, समय तो नजदीक आता जाता है। किराया आदि पड़ेगा, उससे डरने की बात नहीं है। एक दिन ऐसा भी आवेगा जो तुम्हारे पांव पड़ेंगे, हाथ जोड़ करके ले जावेंगे कि हमारा ये हाल ले लो अपनी सेवा करने के लिए, तुम भी फट से करेंगे। जहां देखेंगे अरे हमने तुमको पहले इतना समझाया, तुमने समझा नहीं, अभी हमको ढेर के ढेर मिलते हैं तो तुम भी कहते हो कि हाल ले लो, शर्म नहीं आता है। तुमने हाल खोल करके इतने कोस खाने बनाए। कन्याएं जब ऐसे बैठ करके समझावेगी तो उनका हृदय विदीर्ण हो जाएगा। बाकी बच्चों को कोई मकान आदि खरीद नहीं करना है, ईश्वरीय सेवा करने के लिए। बच्चों के पैसे बच्चों के पेट में जाना चाहिए। मिट्टी में पैसे नहीं मिलाने हैं, ऐसे ही थोड़े ही छोड़ देना। बल कोई 2-3 हजार किराया भी ले ले, बड़ा म्यूजियम खोलो। ये ईश्वरीय कॉलेज है जिसमें करेक्टर सुधारे जाते हैं। मुख्य विकार का करेक्टर, और मनुष्यों को तो ये करेक्टर ही अच्छा लगता है। दुनिया बहुत खराब है। 8-10-12 वर्ष की बच्चियां समझती हैं, छोटे बच्चे के साथ विकार करना खेल है। बाप भी बच्चियों के साथ खेल करते हैं, बात मत पूछो। ये साधु संत आदि कहलाने वाले सब फंसे हुए हैं काय में, विकार में। ये है ही सारी विकारी दुनिया। ये गुरु गोसाई आदि भी गंध करते रहते हैं, पति तो बन पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, अभी ये चलिए खड़िए की भक्ति पूरी हुई, डाके उतरते उतरते नीचे गिर पड़ती है। रावण एकदम लात मार करके नीचे गिरा देता है लक संग में। मनुष्य जब गुस्से में होते हैं तो लात मारते हैं। रावण ने भी लात मार करके सीढ़ी से नीचे उतार दिया। ये बेहद की बात है, कहां की है? बेसिक वालों ने क्या किया है? तुमने सच्ची बात बताई, बाप का सच्चे परिचय दिया तो लात मार करके नीचे उतार दिया। बाप कहते हैं इन बातों को समझाने में भी गफलत मत करो, अभी झुटका खाने का समय नहीं है। स्टूडेंट तब झुटका थोड़े ही खाते हैं, कब उबासी नहीं देते? न पढ़ने वाले पिछाड़ी में उबासी देते रहेंगे, झुटका खाते रहेंगे। बाबा समझ जाते हैं ये क्या पद पावेंगे, तो स्वर्ग में जावेंगे, तुम्हारा शास्त्रों में कितना नाम होगा। बाकी ये भी बतलाते हैं कि पद में रात दिन का फर्क है। बाबा खास करके कुमारियों को समझाते हैं, बोलो हम अपना हीरे जैसा जीवन बनाने के लिए ये रूहानी सेवा करती है। तुम भी चाहते हो कि हम शिष्टाचारी बने, तो जो पवित्र रहेंगे वो ही शिष्टाचारी बनेंगे, अपवित्र तो नहीं बनेंगे। कन्याओं का भी काल जो जिसमें भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बने। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।